ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त गुरु प्रसाद सर्वशील मम शीलम सर्व पावने मम पावनम सर्व कर्तव्ये मम कर्ता नानक लेपछेपना लिपियते मुखरे सासर खट सिंग जनन चढ़ जाए अंग लखे बधुरो सुने जो काल कृपा करा सन्मान्य गुरु सत्संग जीव सनेमर गुरुदेव जी फतेह कबूल करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तंदुरुस्ती शरीर की एक अवस्था है, बीमारी भी शरीर की एक हालत है, धर्म एक मन की अवस्था है, अधर्म एक मन की अवस्था है। शरीर नूं वेख के अंदाजे लग जाते ने ये बीमार है ये तंदुरुस्त है। मैं फिर अर्ज करा तंदुरुस्ती शरीर की एक अवस्था है और ये अवस्था बार प्रगट होती है। बीमारी शरीर की एक हालत है और ये शरीर के तल से प्रगट होती है, दूजे नूं पता चलता है ये ठीक नहीं है, ये शरीर तल से स्वस्थ नहीं है। धर्म एक मन की अवस्था है, अधर्म एक मन की अवस्था है। मन तक किसी की पहुंच होवे ताई वो कह सकता है ये मनुख धार्मिक है ये अधार्मिक है। मैं फिर अर्ज करा धर्म तन की अवस्था नहीं है। हो सकता है तन देते बहुत सुंदर श्रृंगार होवे धर्म का, मानसिक अवस्था वो है ही नहीं। हो सकता है कंध पे कोई भी कपड़ा नहीं, नगन फिरत रंग एक के ओ शोभा पाए, पाग पटंबर बिरथया जै रचलो भाए। महाराज कहने एक दे रंग च है, कंध पे कोई कपड़ा भी नहीं। हूं कपड़े तो असी पहचान करते हैं, वस्त्र तो ही पहचान है, और किस तरह करोगे। नगन फिरत रंग एक के ओ शोभा पाए, पाठ पटंबर बिरथया जै रचलो भाए। धर्म एक मन की अवस्था है, अधर्म एक मन की अवस्था है। संसार एक मन की अवस्था है, निरंकार एक मन की अवस्था है। भगत कहिंदा संसार है ही नहीं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। संसारी कहिंदा नहीं, मनुख ने पशु ने पक्षी ने सूरज चंद तारे है जमीन है वनस्पति है, गोविंद ते नहीं परमात्मा ते नहीं। देखते पयासी मकान दिखाई दें देन, बंदे दिखाई दें देन, पशु दिखाई दें देन, पक्षी दिखाई दें देने, रब ते कोई नहीं। पर गुरु अमरदास जी महाराज कहने ने ए इस संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। सानू ते हरी दिखाई दे। कबीर कहिंदे ने दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिन आवर न देखा। मैं ते हरी तो बिना इना दो अखां नाल होर कुछ देखदा ही नहीं। तू कह सकदे इना दो अखां नाल जगत तो बिना होर कुछ दिखाई नहीं देंदा। बंदे दिखाई देते हैं, पुरुष दिखाई देते हैं, स्त्रियां दिखाई देंदियां ने, पशु दिखाई देते हैं, पक्षी दिखाई देते हैं, سورج چند تارے دکھائی دے پھل پھل دکھائی دے رب کتنے صوفی سنت جناب شمس تبریز جس کی پٹھی کھل ملتان دے نواب نے ملتان دے چلا دیتی سی کہندا دوئیرا چوں بدر کر دم دو عالم را یتے دی دم کہندا اکھاں تے دو نے پر غضب دی گل ہے میں جدھر دیکھنا دکھائی اک لیندا اکھاں دو نے دکھائی اک لیندا کئی دفعہ کسی دی اکھ ایک ہوندی ہے دکھائی چار چار دیندے ہیں گستاخی ماں دکھائی دس دس دیندے ہیں وی وی دکھائی دیندے ہیں کہیں گے دو اکھاں نے ایک دکھائی دیندے جدھر بھی میں نگاہ مارا کبیر کہندے نے دوئے دوئے لوچن پیکھا او ہر بن اور نہ دیکھا کیویں بھروسہ کریے کچھ نہیں پتا چلتا تسی سنسار ویکھ رہے ہو کہ نرنکار ہوں میں پھر عرض کراں سنسار ایک من دی حالت ہے اتر متر گلب پر گلب کلال ود کونے ود کرے ود ویٹو گھرے گھرے برتری کہندے نے کہ سارے جیو جنتو یہ پتر متر بھراتا سب میرے من تو پیدا ہوئے میرے من دی اوستھا ہے یہ اوستھا پشو دی نہیں ہے تو پشوؤں کی دنیا چ کوئی ماں نہیں ہے کوئی بہن نہیں ہے کوئی بھرا نہیں ہے وہ دی مانسک اوستھا ہی نہیں ہے کہندے میرے من چ پیدا ہوئے اے پتر اے متر اے ماں باپ اے پتنی اے بہنا اے بھرا اے سب میرے من کی حالت پشو کو اس طرح کا من نہیں ہے تو پشوؤں کی دنیا چ کوئی نانکے نہیں کوئی دادکے نہیں کوئی سہرے نہیں ہے سہرے دادکے نانکے من کی اپج ہے یہ من تو پیدا ہوا ہے برتری کہنے سارا پسارا میرے من چ پیدا ہوا ہے سنسار من کی حالت ہے نرنکار من کی اوستھا ہے یہ میں عرض کر دیا ایک دفعہ میں پھر دوہرا دیا تاکہ پوری پکڑ اس گل آ جائے تندرستی شریر دی ایک حالت ہے بیماری شریر دی ایک اوستھا ہے اگر کوئی کہے بیماری نہیں ہے کس طرح کہہ دی ہے نڈال ہے شریر بحال ہے شریر تندرستی شریر دی ایک اوستھا ہے یہ کہہ دی یہ نہیں ہے اس منک کا اٹھنا بیٹھنا دستا پہ تندرست ہے اس کا چلنا پھرنا دستا پہ تندرست ہے یہ طرز زندگی دستی پی ہے تندرست ہے نرنکار من ایک حالت ہے سب گوبند ہے سب گوبند ہے گوبند بند نہیں کوئی سنسار ایک من کی حالت ہے اور جس نو سب سنسار دکھائی دیندا ہے پدارت دکھائی دیندے ہیں پرماتما نہیں جنو پرماتما دکھائی دیندا ہے انو پدارت نہیں یہ تو پھر اوستھا دا انترا ہوا نا بیماری اسی شریر تے ہے تندرستی اسی شریر تے ہے نرنکار اسی من دی حالت ہے سنسار اسی من دی اوستھا ہے اب سارے ستسنگی کبیر کہتے ہیں سنسار کتنے ہے نرنکار ہی نرنکار اس تو بنا اور کچھ بھی نہیں دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تو اس کے بہت سارے سوئیے لکھ دیتے ہیں چلو دو چار میں آپ کے سامنے رکھ دیا کت ہوں سچیت ہوئے کے چیتنا کو چار کیو کت ہوں اچنت ہوئے کے سوت اچیت ہو اے پربھو کمال ہے کدھرے تو بڑا چیتن ہے ساودان ہے سوجوان ہے پر کدھرے تو بالکل اچے بالکل اچے یہ ضرورت ہے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جی ایسا کہہ رہے ہیں جاپ صاحب دیکھتے کہنے نمو کلے کرتا نمو شانت روپے اے شانتی دے روپ پرماتما تینو نمسکار ہے پر اے کلیش دے کرتا پرماتما تینو نمسکار ہے تیتو بنا کلیش بھی نہیں ہو سکتا तो बिना शांति भी नहीं हो सकती। ये बड़ी हिम्मत है। इस्लाम ये हिम्मत नहीं कर सकया कि अतकथनी में नहीं करता। ये सही है। इस्लाम के बानी ने कह दिता सारे गुण खुदा तो आउंदे ने, सारे अवगुण शैतान तो आउंदे ने। सारा चानना खुदा तो आउंदा है, सारा अंधेरा शैतान तो आउंदा है। सारी शराफत खुदा तो आउंदी है, सारी बदमाशी शैतान तो आउंदी है। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल फिर खुदा बहुत कमजोर है, शैतान बड़ा बलवान है, क्योंकि संसार में इतनी शराफत नहीं है जितनी बदमाशी है। संसार दे चेतना चानना नहीं है जितना अंधकार है। जगत दे चेतनियां नेकियां नहीं ने जितनियां बदियां ने। फिर ते शैतान खुदा ते हावी जापदा, फिर ते खुदा कुछ भी नहीं। हिम्मत नहीं कर सके, किस तरह मन लेंगे कि जन्म खुदा तो आउंदा है, मरण भी खुदा तो आउंदा है, ये खुशियां खुदा तो आउंदियां ने, ये रोने भी खुदा तो आउंदे ने, ये जन्म खुदा तो आउंदा है, मौत भी खुदा तो आउंदी है, ये सारे गुण खुदा तो आउंदे ने, ये अवगुण भी खुदा तो आउंदे ने, तो विभाजन कर देता नहीं। नेकियां खुदा तो आउंदियां, बदियां शैतान तो आउंदियां। तो बदियां का प्रभाव तो मनुख के मन के उत्ते बहुत ज्यादा है। फिर तो बदियां बहुत, यानी शैतान बड़ा ताकतवर जापदा है, और शैतान के सामने फिर तो खुदा कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत, नमो अंधकारे नमो तेज तेजे, ये प्रकाश दे स्वरूप परमात्मा तेनु नमस्कार है, ये अंधकार दे स्वरूप परमात्मा तेनु नमस्कार है। तेरी कला तो बिना अंधेरा भी नहीं हो सकता, तेरी होंद तो बिना प्रकाश भी नहीं हो सकता। अंधेरा अड दिखाई देता पै, रोशनी अद दिखाई देती पई है, दो ये दो दिखाई दे रहे हैं। बदमाश अलग दिखाई दे रहा है, शरीफ अलग, मित्र अलग दिखाई दे रहे हैं, दुश्मन अलग। भाई कन्हैया कहने मैनु नहीं दिखाई देता, दुश्मन नहीं दिखाई देता, मैनु एक दिखाई देता, मैं की करा, मैनु नहीं दुश्मन दिखाई देता। दो भी जड़ी भाषा है, यही संसार की भाषा है। इस तो पता चल रहा है मन दुपाड़ है, मन दुपाड़ है तो दो दिखाई देंगे, क्योंकि संसार विच दो हैं, केवल पुरुष नहीं स्त्रियां भी ने, सिर्फ वड्डे नहीं कुछ छोटे भी ने, सिर्फ सियाने नहीं कुछ मोड़ भी है, सिर्फ सुंदर नहीं कुछ करूप भी है, सिर्फ हासे नहीं कुछ रोने भी है, और सिर्फ खुशियां नहीं पर बलगम भी है। ये तो दो, जिसनों ये दो दिखाई देने, अंधेरा दिखाई देता, रोशनी दिखाई देती है, खुशियां दिखाई देंदियां, गम दिखाई देता, ये संसारी है। संसारी तो मुराद है, संसार तो प्रभावित है, दुख तो प्रभावित है, सुख तो प्रभावित है, ये खुद वड्डा नहीं है, दुख सुख वड्डे है, क्योंकि दुख इसको प्रभावित कर देंगे, ये बेहाल हो जाता है, निडाल हो जाता है। सुख इसको प्रभावित कर देते हैं, आलसी हो जाता है, दलिदरी हो जाता है, तो दोहां तो प्रभावित हो रहा है। संत दोहां तो प्रभावित नहीं होता, दोहां तो उच्चा उठ जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाते, कंचन माटी माने। संत दुख सुख नूं प्रभावित करता है, संत दुख सुख तो प्रभावित होता नहीं। सुख तो प्रभावित हो गया है, संत वड्डा नहीं, सुख बहुत वड्डा है। दुख तो प्रभावित हो गया है, ये कोई संत नहीं, दुख बहुत वड्डा है, दुख ने प्रभावित कर देता है, सुख ने प्रभावित कर देता है। तो जो प्रभावित करे वो तो अपने नालों वड्डा है, दुख प्रभावित करता है, सुख प्रभावित करता है, बेहाल हो जाता है मनुख। ये मन दे दुफाल दी अवस्था है, दुबधा मन दो, सब कुछ उसने दो बना देता है। जिस दिन मन एक होता है, कि ध्यान की साधना, धर्म की साधना, कथा कीर्तन, ये दो मन नु एक करना है, एक कीता बस एक दिखाई देता है। دوئی را چون بدر کردم دو عالم را یکے دیدن کل جگ دے اوتاری پرش اس یگ دے مالک دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دے کنٹھ توں جڑا پہلا برہم ناد نکلیا ہے ایک گرو گرنتھ صاحب دا پہلا اکھر ہے ایک ساری گربانی ایک دی پرکرما کرتی ہے وہ ایک کی ہے اس دا سروپ کی ہے اس دا سبھاؤ کی ہے اس دی ہوند کی ہے ساری گربانی اس ایک دی ویاکھیا ہے ایک سمست وریز کہنے دوئی را چون بدر کردم دو عالم را یکے دیدم بھائی صاحب بھائی نند لال برہمن مستاق بت زاہد فضائے خان کا زاہد نو دھارمک استھان صرف مسجد دکھائی دیندی ہے مندر نہیں مندر دے سامنے اس کا سر نہیں جھکتا برہمن نو مندر دھارمک استھان دکھائی دیندا ہے مسجد نہیں مسجد دے سامنے اس دے من دے ستکار نہیں پیدا ہوندا بھائی صاحب کہندے نے برہمن مستاق بت زاہد فضائے خان کا ہر کجا جا میں محبت دیدم سرشار اس میں تے جدر بھی دیکھتا چاہے مندر ہے چاہے مسجد ہے ایک دکھائی دے مسجد بھی ہوئی مندر بھی ہوئی کتہوں سچیت ہوئے کہ چیتنا کو چار کیو کتہوں اچنت ہوئے کہ سووت اچیت ہو کتہوں بھکھاری ہوئے کہ مانگت برکت بھیک کہوں مہادان ہوئے کہ مانگو دھن دے تو ہوں داتا تے بھکھاری نہیں دکھائی دیندا اے پربھو اے بھکھاری اے منگتا منگ رہے ہے کہ کوئی ہور نہیں تو ہی منگتا ہے بڑی ہمت تے بڑی جرت اے جو مہا دانی بنے آیا ہے دان دے رہا ہے کہ کوئی دان نہیں دے رہا تو دے رہے ایک داتے ایک بھکھاری بھی سب تیرے چول وٹ تیرے تماشے یہ تم کتہوں بھکھاری ہوئے کہ مانگے تو فرت بھی کہوں مہادان ہوئے کہ مانگے او دھن دے تو کہوں مہاراجن کو دیجت انند دان کہوں مہاراجن پہ چھین چت لے تو کہوں بے دری کہوں تانسے وپریت کہوں ترگن اتی کہوں سرگن سمیت ہو اے پربھو میں دیکھدا پیا کدھرے تو ودیا دی ریت چلدا ہے گیان دی ریت کہنے ایک کوئی پن ہے گیان ایک کوئی پاپ ہے اگیان اگر اگیان ہے تو کسی ہور پاپ دی لوڑ نہیں سارے پاپ آپ ہی آن گے اگر گیان ہے تو کسی ہور پن کرم دی لوڑ نہیں سارے پن آپ ہی پرکرما کرن گے گیان دی مہاتما بدھ نے تے کہہ دتا سی گیان ہی بھگوان ہے سارے دیش کے تمام پراچین رشی مچھلی کہندے نے وید ہی بھگوان ہے وید گیان وید ودیا گیان بھگوان ہے تو کدرے گیان دی ریت چل رہے ہیں کدرے اگیان دی ریت بالکل گیان تو وپریت کہوں بے دریت کہوں تانسوں وپریت بالکل اس کا الٹ کہوں ترگن اتی کہوں سرگن سمیت کدرے تو تین گنا دے جی رہے ہیں رجو گن تمو گن ستو گن منک الگ الگ ٹائپ دے نے سارے انہوں تین حصے چ ونڈیا تین طرح کے منک ہوتے ہیں رجو گنی تمو گنی ستو گنی ایک چوتھی شرینی ہے جو انہوں تین تو اچھی اٹھ جاتی ہے انہوں تریا پد کہتے ہیں تمو گن تم اندکار تمو گن اگیانتا چ جی رہے ہیں مورتا جی رہے ہیں اچیت جی رہے ہیں उद्दम कुछ भी नहीं करना उपराला कुछ भी नहीं करना कर्म कुछ भी नहीं करने फल दी मंग बहुत ज्यादा जब उद्दम तो बिना कीते हुए कर्म तो बिना फल दी प्राप्ति होती नहीं तो क्रोध नाल भर जाता है क्रोध क्रोध पता की है अतिरिक्त अहंकार क्रोध बन जाता है अतिरिक्त लोभ क्रोध बन जाता है अतिरिक्त काम लोभ जो है क्रोध बन जाता है क्रोध का मतलब है जिस तो चाया से मान सम्मान देवेगा नहीं मिलेगा अतिरिक्त अहंकार क्रोधी हो जाता है जितना धन चाया से नहीं मिलेगा अतिरिक्त लोभ क्रोधी बन जाता है। वासना की पूर्ति करनी चाहिए सी, नहीं हुई, अतिरिक्त वासना क्रोध बन जाती है। और जेड़ा जेड़ा अतृप्ति विच खड़ा हो जाए, रोक खड़ी करे, उसे ते क्रोध आ जाता है, उसे ते गुस्सा आ जाता है। कहूं वेद रीत, कहूं तांसा विपरीत, कहूं त्रिगुण अति, किधरे तो बिल्कुल तमो गुणे। मेहनत कुछ भी नहीं करनी, उपराला कुछ भी नहीं करना, कर्म कुछ भी नहीं करने, लेकिन फल की मंग बड़ी प्रबल, कि जब फल की प्राप्ति नहीं तो क्रोध। आलस निंद्रा तंद्रा हर वक्त गालब रवे, 6 घंटे रात का आराम पूरा हो गया शरीर का, फिर भी कीर्तन हो रहा है, सौ गया है, कथा हो रही है, सौ गया है, पाठ हो रहा है, सौ, हर वक्त आलस निंद्रा तंद्रा, यही चमड़े हुए किसी की गलत औखे ना होना। मैं देखे है बहुत सारे बंदे सिर्फ गुरुद्वारे सुन ले आते, अमृत सिर ढा के ही बैठे हुए, जिन्हें फुल मुरझा जाने तो गिर जाते, ये मुरझाए हुए बैठे होते, इन्हों देख के हैरानगी आती है, गुरु के घर आके भी नहीं खिड़े तो फिर कि थां खिड़ोगे, कितने खिड़ोगे, ये खेड़ा कितने नसीब हो गए। तमो गुण आल सनिंदरा तंदरा हर वक्त गालम, रजोगुण बड़ी भज दौड़ है, बड़ी मेहनत है, शरीरक मेहनत, मानसिक मेहनत बड़ी, एक क्षण भी अपने आप को वेला नहीं रहने देता। जैसे कई कहने बहुत बिजी हाँ, बहुत बिजी हाँ, बहुत बिजी हाँ, रजोगुण बहुत कर्मां दे लीन ने, बहुत परिश्रम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सारी मेहनत नु भाग लगता नहीं, सारे कर्म कभी फल तक पहुंचते नहीं, सारे बोए हुए बीज फल तक नहीं अपड़ते, ये तो सियाने किसानों नु पता है। सारे लाए हुए बूटे फल तक नहीं अपड़ते, ये तो चंगे चंगे मालियां नु पता है, सारे कीते हुए कर्म फल तक नहीं अपड़ते, रह जाते हैं कुछ, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं। पहाड़ा चो निकलते ऐसे झरने जो बेचारे सागर तक पहुंचने तो असमर्थ रह गए हैं, कुछ ऐसे भी जो फल तक पहुंचने तो असमर्थ रह गए हैं, ऐसे कुछ कर्म फल तक नहीं पहुंच रहे। तो कीते ने कर्म कीता है, पुरुषार्थ कीता है, उद्यम फल की प्राप्ति नहीं हुई, दुखी रो रहे बेजार, रजोगुणी सतोगुणी, उद्यम आर्थिक भी बड़ा है, धार्मिक भी बड़ा है, हर पल पे इसके कुल उद्यम है, लेकिन जिन्हें श्वासों की गति समान चले, नवस समान अवस्था चले तो बंदा तंदुरुस्त है, नवस तेज चले तो कहने बीमार, गति परमात्मा ने बना के रखी हुई, तेज चलन लग पड़े तो रोगी। इस तरह ही श्वासों की गति है, इस तरह ही दिल की धड़कन है, इस तरह ही खून की गर्दिश है, बकायदा इन्हों की रफ्तार इन्हों की चाल परमात्मा ने नाप तोल के रखे हुआ है। शरीर में गर्मी कितनी रहनी चाहिए, 98 डिग्री तक है तो ठीक, अगों वध गई है रोगी बीमार, घट गई है तां भी बीमार, रोगी नाप तोल के रखे, बार बावे टेम्परेचर 0 हो गए, 0 हो गए तां भी शरीर के अंदर ते गर्मी 98 रहती है, बाहर भावें टेम्परेचर 50 तक चला जाए तां भी शरीर के अंदर गर्मी 98 रहती है, ऐसा एयर कंडीशन परमात्मा ने बना के रखे ईश्वर ने। लेकिन इसके तवाजन नूं कई लोग दावा डोल कर देते हैं, सतोगुणी उहदे सारे कर्म तवाजन बेचने संतुलन बेचने, जैसे श्वास संतुलन दे चल रहे हैं, जैसे नबस तंदुरुस्त बंदे भी संतुलन दे चल रही है, जैसे तंदुरुस्त बंदे का दिल बकायदा तवाजन दे धड़क रहा है, उसके सारे कर्म संतुलन दे चले सतोगुणी, और उसके हर कर्म के उत्ते सच की मोहर आती है सतोगुणी। लेकिन सतोगुणी भी माया का रूप है, उन्हें इतना ख्याल रहता है कि मैं एक कर्म कर रहा, करता भाव उसके अंदर रहता है, इस वास्ते परमात्मा तक पहुंचने तो असमर्थ रह जाता है, कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, कर्म करत होवे नहे कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म। धर्म मलीन हो जाता है जब कर्म का करता है खुद मन लगे। मैं कीर्तनकार मैं कीर्तन का करता ये पाठ नहीं कीता है। और इतने कीर्तन इतनी गिनती दे कीर्तन गिनती सुनानी भी गुरु नु संगत रहो। इतना दान मैं देता है अपनी जबान नाल बोल रहा है पर देखता अपनी जबान नाल मैं उत्थे बोलांगा जिथे मैं होवांगा जिथे मैं ना होवां उत्थे भी मेरा दिता हुआ दान बोलता रहा है तो बंदा पत्थरां दा सहारा लेंदा बेचारे पत्थरां ते लिखे हुए अक्खर बोलते रहते
करता सतो गुणी कर्म ते सारे शुभ करता है पर शुभ कर्मा दा करता अपने नु मन लैंदा है तो शुभ कर्मा दा फल भोगदा रहेगा चंगा चलो खुशियां मिलदिया रहेंगे सुख मिलते रहेंगे परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा की प्राप्ति कदों होती है कर्म करत होवे नह कर्म। हे प्रभु जब तन तेरा है मन तेरा है तेरी तरफों मिले होया एक दान है अगर मैं शुभ कर्म भी किते ने हे प्रभु तू ऐसा माहौल बनाया ऐसी मैनु समझ दिती ए भी तेरी अनंत बख्शिशा दे चाहो एक बख्शिश मेरा कुछ भी नहीं ऐसा मनुख समाधि लीन हो जाता है। यह उसकी मानसिक अवस्था होती है। महाराज कहने किधरे तू तीन गुणा दे जी रहे हैं हे प्रभु तू जी रहे हैं किधरे तू तमो गुणी है किधरे तू रजो गुणी है किधरे तू सतो गुणी है पर तू किधरे इन्हों तिना तो उच्चा उठ गया कहूं बेदरीत कहूं तासु विपरीत कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत कहूं जच गंधर्व उरग कहूं विद्यागर कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत किधरे तू राग देच गंधर्व है किन्नर है वजंत्रियां दे चों किन्नर है गायका दे चों गंधर्व है किधरे तू महान विद्वान है। फिर साहब अगुआ कहें काहू हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो काहू हो के तुरका पुकारे बांग दे तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हे प्रभु किधरे तू हिंदू है तू किधरे तू मुस्लिम है किधरे तू हिंदू है तू गुफा विच बैठ के गायत्री के मंत्रां दा जप पिया करदा है तू काहू हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो काहू हो के तुरका पुकारे बांग दे तो किधरे तू हिंदू नहीं है हे प्रभु तू तुर्क है मुसलमान है मुनारे ते चढ़ के बांग पिया देना तू दोई रा चूं बदर कर दम दुआलम राय ते दीदम। एक उसने किसे वक्त एक महान आलम फकीर ने ऐसा बयान किया सी मुझ चुकी है तमीज कुफरो इमान सदा नाकूस की आती है अजाम बन गए कहना हूं कुफर ते ईमान का विकरा भी खत्म हो गया जे मंदिर दे घड़ियाल वजद तो मैं इन सुनाई देंदा जिमें मस्जिद की अजान हो जे मस्जिद दे अजान आती है तो मैं हूं इन सुनाई देंदा जिमें मंदिर का घड़ियाल पे वजद मैं की करा एक दोई रा चू बदर कर दम दो आलम राय दम गुरु नानक दे कंठ तो जड़ा पहला ब्रह्मनाद निकले है एक तो संत एक मन की अवस्था है असंत एक मन की अवस्था है। हुण मैं अर्ज करा बीमार होके बीमारी का पता चलता है बीमारी की किसे दे सिर दे कदी दर्द हो ही नहीं मेरे ख्याल उसनू नहीं पता सिर की पीड़ा की आती भावे लख उसनू कहिए सिर मेरा दुखदा पै बहुत दुखदा पै है अगला कहेगा हां ठीक है दुखदा पै पर ये दुखना की है ये दर्द की है उसनू की पता गुरबाणी का फैसला लागी होए सो जाने पीर ये पीर इसनू लगी हो जाने बाकी व्याख्या है मैं क्यास आराइया ने ऐसा होगा एक कह रहा मेरी दाल दुख रही है बहुत दुख रही है एक भी कभी दुखी नहीं तो सुन रहा है महसूस करता है हां दुख रही होगी पर यह पीड़ की है कख भी पता नहीं कुछ भी नहीं पता इन कोई भी बोध नहीं तो हूं मैं अर्ज कर दिया संत ही संत नूं पहचान सकता है दूसरा पहचान ही नहीं सकता ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੰਗ ਤੇ ਤਰੰਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਣਾ ਖਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਸੰਤ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ। ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਸਥ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿਚ ਰੋਗ ਵਧਿਆ, ਰੋਗ ਵਧਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਆਏ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਭ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਸੰਤ, ਅਗਰ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜੂਮੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਸੰਤ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਸੰਤ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਦ ਸੰਤ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਅਜੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਗ ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੈਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔ ਖਦਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹਿ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਹਿ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬਾਣਾ। ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ? धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने भोगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाद ओदा नाद घट घट देश वज रहा है घट घट देश बोल रहे हैं। असी कहने ना ईश्वर व्यापक है वो व्यापक है तो ओदा वेखना भी व्यापक है ओदा सुनना भी व्यापक है ओदा बोल भी व्यापक है अगर वो व्यापक है तो उसका सोचना भी व्यापक है। असी व्यापक नहीं हाँ सीमत तो साड़ी दृष्टि सीमत है। असी जिथे आने उथे साड़ी दृष्टि जिमें मैं इथे बैठा मेरी अखा भी इथे ने यह नहीं कि मैं अपनी अखा कमरे छोड़ के आ गया या मैं अपने कन किसी थां ते होर जगह रख के आ गया या मैं अपनी जबान नूं किसी होर टिकाने च रखे नहीं मनुख जिथे है उथे उसकी जबान है उथे उसके कन ने उथे उसकी दृष्टि है उथे उसकी सोचना है। अगर परमात्मा व्यापक है तो उसकी दृष्टि व्यापक होगी अगर वह व्यापक है तो उसका सुनना व्यापक होगा अगर वह व्यापक नहीं तो उसका सुनना सीमित होगा सिर्फ गुरुद्वारे च सुनेगा मस्जिद च नहीं सुनेगा मस्जिद दे सुनेगा मंदिर दे च नहीं सुनेगा मंदिर दे सुनेगा बाजार दे च नहीं सुनेगा पर उसका सुनना व्यापक है तू बोलते सही किधरे भी बोल उसका सुनना व्यापक है। देखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानया दूरी रे उदा वेखना व्यापक है उदा सुनना व्यापक है ऐ पुरुष उसका बोल भी व्यापक है किथे उसका बोल तेरे घट दे बोल रहे घट घट आवाज है ना सुनाई क्यों नहीं दे रहा तू घट दे कदी प्रवेश नहीं किया तू अपने अंदर कदी जाती नहीं मारी बार ही बार रहे हैं बार बार सारी जिंदगी कीर्तन सुनते रहो कुछ भी नहीं होता गुस्ताखी मार बारों बार सारी जिंदगी कोई कथा करता रहते कथा सुनता रहे कुछ भी नहीं किसे ने किसे दिन अंदर की कथा सुन ली बाहर की कथा नाल संबंध टुट जाता है बार करना भी रह जाता है बार सुनना भी रह जाता है कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो बिसरियो गावन मैं एक दिन बाबे बलवंत सिंह से यही प्रश्न किया चंगी बैरागी आत्मा से मैं कहा तुसी कथा कर दे हो सवेरे कर दे हो शामी कर दे हो तो प्रेरणा लेकर मैं करदा ऐ जिहड़ी अवस्था है खतनी बदनी कहन कहावन ये सब कहना ही है कहन मात्र गल्ला कहने तक है और ये अवस्था किधरे प्रगट हो गई है तो कथनी रह जाती है सुनना भी रह जाता है बाहर की गल नहीं रह जाती तो मैं स्वभाव कह रहा वो कथा की है वो कीर्तन की है बाहरों सुनना भी रह जाता है बाहरों बोलना भी रह जाता है। यकीन जानो मैं चंगी तरह याद जो बच्चा बिलख के रोंदा है इस तरह रोए कहने रब जब मैं मिलांदा तो रोगी मिला तंदुरुस्त बंदा नहीं मिलांदा इंज कह के अपना पला छुड़ाया रोगी मिलते ने मैंने तू भी एक महारोगी मेरे से प्रश्न ना करया कर मेरा हिरदा तड़प उठता है मैं दुखी हो जाता कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो बिसरियो गावन गावना ही रह गया बोलना ही रह गया ये अवस्था फिर किमें बने तू सुन जितनी गहराई नाल सुनेगा उतनी गहराई तेरा शब्द गुरु दा अंदर प्रवेश करेगा उपरों उपरों सुन रहे हैं शब्द उपर उपर है हृदय तक पहुंचता ही कोई नहीं गहरा होके सुन गहराई नाल सुन कहिंदे ने बदल गरजदे पए होवन बिजली कड़कदी पई होवे अद्धी रात दा वक्त होवे सुती हुई मां दी नींद नहीं खुलदी गोद का बच्चा मामूली जिया बिलखता मामूली जिया आवाज अक खुल गई है बदल गरजदे पै सन इन्हां दे गर्जन ने तेरी नींद नहीं तोड़ी बिजली कड़कदी पई सी इस कड़क ने तेरी अखां नहीं खोलियां हवा दी शां शां दरवाजियां दे खड़ाक आवाज इसने तेरी अखां नहीं खोलियां बच्चा मामूली जिया रोया बिल्कुल महीन आवाज दे छोटी आवाज दे तेरी अख खुल गई ਬਹੁਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਾਗ ਪਈ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਦਲ ਗਰਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਾਈਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਤੀਰ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੜਪਦਾ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਨਿਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆਖੇ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਸ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਾਈਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੀਰ ਭਰਈਆ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪੀੜਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਲਮਕਾਵਾਂ ਕਿ ਪੀੜਾ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਤੜਪਿਆ ਹੈ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤੜਪੀ ਹਾਲਤ ਚ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਇਹ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਔਰ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੰਗਾ ਹੂਆ ਬਾਵਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੂਆ ਕਾਨ ਪਾਉਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਇਸ ਬਾਣ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀੜਾ ਵੀ ਇਤਨੀ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਰਸ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਰਸ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਰਸ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਪੀੜਾ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੀੜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪੀੜਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਤੜਪ ਰਹੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰੱਬ ਦੁਆਏ ਵਸਲ ਨਾ ਹਰ ਗਿਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਰਹੀ ਮਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ ਇਸ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਪੀੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਯਾ ਰੱਬ ਦੁਆਏ ਵਸਲ ਨਾ ਹਰ ਗਿਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਫਿਰ ਦਿਲ ਮੇ ਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਹਸਰਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੂੰਗਾ ਹੋਗਾ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਤਨਾ ਅਥਾ ਰਸ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਤਨੀ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਾਵਰਾ ਬਾਵਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲੇ बावरे तो मुराद पागल नहीं। भोला चलाक ओ जो बारों कुछ हो रहा है अंदरों कुछ हो रहा है सी कह देना बड़ा चलाक है। बड़े दो रूप ने बारों बड़ा दानी दिखाई देता है अंदरों बेईमान। बारों जो हाथ जोड़ के मिल रहा है अंदरों बड़ा अहंकारी है। बारों बड़ा मिठा बोल रहे अंदरों बड़ा कौड़ा है। वो हाजिर मिठा बोल दे बाहर जाए कड़े विश खोले सामने बड़ा मिठा पे बोल देना बाहर जाके सवाय निंदा तो और कुछ भी नहीं कर दे। दो बड़ा चलाक है भोला अंदरों बारों एक है। अंदरों बारों एक है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहें मैं उस इंसान नो इंसान मनन नो ही तैयार नहीं जिदी जबान दे बोल कुछ और ने जिदे मन दे भाव कुछ और ने जिदा दिल कुछ और कह रहे हैं जबान कुछ और कह रही है मैं इस चलाक इंसान नो इंसान नहीं मनता। औरंगजेब ने लिखा है हमो मर्द बायद शबद सुखनवर नशिक में दिगर दर्द आने दिगर तेरी जबान ते कुछ और है तेरे चेहरे ते कुछ और है तेरे दिल दे कुछ और है तू चलाक हो सकता है तू फकीर नहीं है। ए माला ए तस्वीर तेरे हद दे सिवाय पखंड तो और कुछ नहीं। भोला अंदरों बारों एक सड़े देश एक महान योगी नो जिसका दिन कल मनाया गया शिवरात्रि शिव जी पता इस देश के उसन की कहने भोला शंकर भोला नाथ भोले भोले भोला सिंह अंदरों बारों एक। भोला मनुख हर एक ते भरोसा कर लेंदा है। भोला मनुख ठगा सकता है ठग नहीं सकता। चलाक बंदा ठग सकता है ठगा नहीं सकता। हजार जां फिदा है आंख के जबानच दिलश जकेश हजारा जिंदरियां उसको कुर्बान कीतियां जा सकदियां जिसकी दिल ते जबान एक है। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान हुण मैं कोई दुनियावी गल सुन ही नहीं सकता बहरा हो गया। हर पासे रब ही रब सुनना जो कुछ भी आवाज आती है जो बोलत है मृगमेन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं हो सब परमात्मा सुनाई देता है। बहरा हुआ कान पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण ऐसा बाणी दा बाण लगे है मन पिंगला हो गया चलन जोगा ही नहीं रहा। स्वामी रामानंद जी कहते हैं कत जाइए रे गल रागो रंग मेरा चित न चलत मन भयो पन मन पिंगला हो गया भटकना मिट गई। हे प्रभु हुण तेरे दर जोगा ही रह गए भटकना मिट गई पिंगले हो गए चल ही नहीं सकते। वाल विष्णु बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करदा मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है ये जो मेरे पैर टूट गए इन्हां दा मेरे उत्ते बड़ा एहसान है। क्यों मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है तुम्हारे दर से अब कर कहीं जाया नहीं जाता। ऐ खुदा हम मैं तेरे दर तो हट के किधरे जा सका जान जोगा ही नहीं रहा पैर ही टूट गए। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। गलत मैं समझ लई है पर मैं आखा किस तरह गूंगा हो गया। पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरबान ये मन दी हालत है मन दी अवस्था है। एक महापुरुष संत दी बरसी मनाने आया सारे मिलके जोड़ी करिए धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु सानू संत बना मानसिक अवस्था ए प्रदान कर ताकि साड़ी भी जीवन यात्रा सफल होए ते ए पंक्ति साड़े ते पूरी उतरे सफल सफल भई सफल यात्रा आवण जान रहे मिले सादा। इतनी सेवा प्रवान करने सारे आंदा हार्दिक तौर पे धन्यवाद। बड़ी एकाग्रता नाल आपने श्रवण किया महापुरुष बाबा इकबाल सिंह जी का हार्दिक तौर पे धन्यवाद। हर साल हुक्मनामा आपका पहुंचता है तो मैनू भी इस महान ब्रह्म ज्ञानी की बरसी रेत शामिल होने का एक स्वभाव अवसर मिलता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन जिंदगी का अंत होवे इस तो पहले बेअंत की झलक मिले हर एक नो मिले ताकि हर एक की जीवन यात्रा सफल होवे। बार बार समूह सत्संगी मुखी ज सज्जन ते महापुरुषों का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। फुल चुक दी क्षमा वाहेगुरु जी का खालसा।